मैंने अपने आप को अच्छा नहीं बनाया, मैं अगर खराब हूं देखने में इसलिए नहीं कि मैंने आपको खराब देखने वाला बनाया। तो जो कुछ मेरे पास है वो किसी दूसरे के कारण है, मेरे द्वारा जो कमाया जाता है वो भी किसी दूसरे के कारण, वो जो शक्ति वो सामर्थ्य वो बुद्धि वो सब कुछ किसी दूसरे ने दिया है। हम अपने आप को उसके बावजूद भी इंडिपेंडेंट व स्वतंत्र सोचते हैं कि हम जो चाहे कर सकें, पर हमारी जो इंडिपेंडेंसी है, जो स्वतंत्रता या आजादी है, उसकी एक सीमा है। ईश्वर ने जहां तक हमारी आजादी की एक सीमा रखी है, उससे आगे जब भी हम बढ़ते हैं तो हमारे साथ साथ पूरे समाज का नुकसान होता है। जहां तक हम आजादी ले सकते हैं वहां तक हम जा सकते हैं। इंग्लैंड में गायों को बीफ खाते हैं तो उनके मांसों को बढ़ाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा मांस हो, तो ब्रिटेन में खास तरह के उनके लिए उनके खाने में खुराक में खास तरह के दवाइयां बनाई गई जो उनके खाने में मिलाया जा सके, और वो जो दवाइयां बनाई गई खास तरह की खुराक उसमें मीट के पाउडर होते थे, खास तरह के मीट के मांस के पाउडर होते थे। ये 5-6 साल के पहले की बात है। तो गायों को दिया गया, उसे गाय सचमुच मोटी हुई, स्थूल हुई, मांस की संख्या बढ़ी, पर कुछ दिनों के बाद दिखा गया कि कुछ लोग एक अजीबोगरीब बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता है, फिर लोग मरने लगे। दुनिया में जितनी भी अजीबोगरीब बीमारी आपको दिखती है वो मैन मेड है। जब भी इंसान अपनी सीमा से बाहर जाता है तभी वो एड्स कैंसर से लेकर के हजारों तरह की नई नई बीमारियों में फंसता है। ये ईश्वर की तरफ से वार्निंग है, अपनी लिमिटेशन के बीच में रहो। तो वो गायों को पता चला रिसर्च करके, जो गायें इस तरह के खास तरह के जो फूड खाए हैं उनके मांस खाने वालों को वो खास बीमारी होती है। तो ब्रिटेन सरकार ने जितने भी सर्वे करके जहां जहां इतने गाय थे सब गायों को मारा गया। हमारी अपनी एक सीमा है, उस सीमा से बाहर जब भी हम जाते हैं ईश्वर हमें वार्निंग देता है। जब भी दुनिया में फ्री सेक्स की चला तो एड्स जैसा बीमारी आया, हम उसको दबाने के लिए नई नई दवाइयां पैदा करते। ईश्वर एक नई वार्निंग देगा, एड्स से भी ज्यादा खतरनाक होगा। जो अपनी वासनाओं का अंधाधुंध प्रयोग करना चाहता है, हर चीज के लिए ईश्वर का अपना डंडा होता है कि आप अपने इस लिमिटेशन से आगे जा नहीं सकते हो। हमने कहा दुनिया में हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब भी हमने जरूरत से ज्यादा माइनिंग की, जब भी हमने धरती को जरूरत से ज्यादा चूसा, जब भी हमने जरूरत से ज्यादा जंगल को नष्ट किया, और उसका परिणाम हुआ कि ईश्वर ने हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के क्लाइमेट चेंज से लेकर के और समुद्र के जल स्तर बढ़ने तक दुनिया भर के परेशानियां खड़ी कर दी। ये वार्निंग है। हम उस गाय की तरह हैं जो पीछे आप देख रहे हैं, जिसके गले में एक रस्सी बंधी हुई है, और जो गांव में ज्यादातर जिनके पास 1-2 गाय होती हैं वो जमीन में गोचर जमीन में उसको बांध देते हैं। 200-400 मीटर की एक रस्सी उसके गले में होती है, उसको एक खूंटी में बांध देते हैं, और वो गाय पूरे जमीन में घूम घूम करके घास चरती रहती है, क्योंकि 200-250 मीटर की रस्सी है तो जितने दूर तक उसको कुछ दूर तक घूमने फिरने का मौका मिलता है। तो गाय को हमेशा एहसास होता है उस गाय को कि मैं आजाद हूं, कहीं भी जा सकती हूं। फिर वो धीरे धीरे छलांग लगाने की कोशिश करती है, जैसे ही छलांग लगाती है उसके गले में उसकी रस्सी खींचती है, उसको दर्द होने लगता है, वो समझ जाता है मेरा इतना ही लिमिटेशन है आजादी की। दुनिया में हर प्राणी की यही सीमा है, ईश्वर ने अपनी एक सीमा बांध रखी है कि तुम जो मर्जी नहीं कर सकते हो। तुम बहुत बड़े इंटेलेक्ट को धारण करने वाले हो सकते हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो सकते हो, तुम मंगल ग्रह में पहुंच सकते हो, तुम चांद में पहुंच सकते हो, तुम क्लोनिंग से बच्चे पैदा कर सकते हो, वहां तक जा सकते हो जहां तक मेरे तरफ से तुम्हें आजादी है। तुम्हारा दिमाग जहां तक चल सकता है वहां तक नहीं। जैसे ही इंसान उस सीमा को पार करता है वैसे ही उसको प्राकृतिक विपदाओं से, नेचुरल कैलामिटी से लेकर खुद के बीमारियों तक हमें सहना पड़ता है। आमतौर पर जैसे हमने पिछले बार चर्चा की थी, हम ईश्वर को अपने ढंग से इस्तेमाल करते हैं। बाइबल में विचार आता है कि ईश्वर ने अपने जैसा मनुष्य को बनाया, पर रियल लाइफ में आप देखेंगे इंसान ने ही ईश्वर को, जिस ईश्वर को इंसान पूजता है, सो कॉल्ड भक्त पूजते हैं, उस भगवान को, उस ईश्वर को इंसान ने पैदा किया, इंसान ने बनाया अपने टाइप का एक ईश्वर। और ज्यादातर वो ईश्वर जो हम और आप जिसको ईश्वर समझते हैं, पिछले बार जैसे हमने चर्चा की, अगला स्लाइड दिखाएंगे, वो किसी सुपरमैन की तरह होता है। जैसे बच्चे सुपरमैन स्पाइडरमैन की फिल्में देखते हैं और देखने के बाद इंस्पायर्ड होते हैं, उनके दिल में यह होता है कि अगर मैं सुपरमैन का चेला बन जाऊं, भक्त बन जाऊं, वह उसको फैन बन जाऊं, तो जब भी मेरे जिंदगी में कोई मुसीबत आए कि मां बाप ज्यादा डांटने लगे, स्कूल में बच्चे को तंग करे, ये सुपरमैन बचाने आएगा। हमारे मंदिर मस्जिद चर्च जाने के पीछे कहीं ना कहीं यही भावना बैठी है कि हम ईश्वर को पटा के रखें, उसके फैन बने रहें, हम उसका भक्त बने रहें, कुछ ना कुछ देते रहें, जब हमारी मुसीबत होगी तो ये हमें बचाने आएगा। अगर नहीं बचाया, हम दूसरे सुपरमैन के पास चले जाएंगे, हम भगवान बदल डालते हैं, हम धर्म बदल डालते हैं, हम मंदिर बदल डालते हैं, बस हमें कोई ऐसा भगवान चाहिए जो मेरी बीमारी में जल्दी ठीक करवा दे, मेरा प्रमोशन ना हो तो प्रमोशन करवा दे, मेरे बच्चे नालायक है तो उसको लायक बना दे, मेरे में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कर दे। अगर ऐसा कुछ नहीं किया, आखिर में भगवान बदलते बदलते भी थक जाते हैं, आखिर में हम कहते हैं कोई भगवान भगवान होता नहीं है। यह इंसानी फितरत है। हम ईश्वर को इसी तरह देखते हैं, ईश्वर को हम अपने तरह बनाते हैं, इसीलिए हमने ईश्वर के लिए घर भी बनाया है, क्योंकि इंसान को रहने के लिए घर चाहिए, तो हम इंसान ईश्वर के लिए भी घर बनाते हैं। और हम जानते हैं कि इस सारी दुनिया को ईश्वर ने बनाया। दुनिया मतलब धरती नहीं है, ये प्लैनेट अर्थ प्लैनेट या पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी तो इस दुनिया का रेत के, रेगिस्तान का एक रेत से भी छोटा है, समुद्र के पानी के एक बूंद से भी छोटा है पृथ्वी इस विशाल विश्व में। जिसने ये विशाल विश्व बना सकता है, हम सो कॉल्ड भक्त अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझने वाले ईश्वर के लिए भी घर बनाते हैं। हम कहते हैं वो चौथे आसमान पर रहता है, कोई कहता है वो सातवें आसमान पर रहता है, कोई कहता है वो खीर सागर में रहता है, दूध का सागर विष्णु रहते हैं, कोई कहता है वो कैलाश पर्वत पर रहता है। हमने उसके लिए अलग अलग घर बना रखा है। हमारे एक प्राचीन शास्त्रों में एक कहानी है कि ईश्वर ने जब सृष्टि रचना कर दी, रचना करने के बाद जब अंतिम में इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया, और वो इंसानों के बीच में रहने लगा, क्योंकि जो हमारी सबसे अच्छी कृति होती है, जो क्रिएशन हमारी सबसे अच्छी क्रिएशन होती है, हम उसके साथ लगाव रखते हैं। तो कहते हैं ईश्वर मनुष्यों के बीच में रहने लगा, पर उसको बड़ी समस्या होने लगी, बड़े सारे प्रॉब्लम्स होने लगे। और वो प्रॉब्लम्स ये था कि हर कोई कोई ना कोई ईश्वर के पास आ जाता था, क्योंकि अपने ही कॉलोनी में ईश्वर का भी घर था, तो जब मॉर्निंग वॉक में या इवनिंग वॉक में निकलते थे या कभी बाजार जाते थे तो जो मिलता था वो ईश्वर को सलाह देता था। जनरली ये हमारी एक बीमारी होती है इंसानों की, कि काम करने वाले दो तीन लोग होते हैं, जो काम नहीं करते वो अच्छा सलाह देते हैं, पकड़ पकड़ के सलाह देते हैं। जैसे आप अपने समाज में भी देखेंगे, दो चार लोग काम करेंगे, जैसा भी किया अच्छा किया बुरा किया, 50 लोग मिलेंगे, ऐसा ना करके ऐसा करते ज्यादा अच्छा नहीं होता है, मतलब सलाह देना हमारी एक फितरत है। तो ये इंसान की फितरत है, तो ईश्वर को भी सलाह देने लगे, भाई आपने नाक को यहां क्यों बनाया, थोड़ा इधर बना देते, आपने दो आंख क्यों बनाया, थोड़ा इधर भी दो बना देते। तो कुछ ना कुछ सलाह देना बीमारी है हमारी, वो तो सलाह दिए बिना हम रह नहीं सकते। काम करने वाले काम करते हैं दो चार, बाकी सलाह देने के लिए पैदा होते हैं। तो ईश्वर परेशान हो गया, जैसे कि दुनिया का हर काम करने वाला आदमी परेशान हो जाता है सलाह देने वालों की सलाह सुन सुन करके, तो वो भी परेशान हो गया। तो उसने मीटिंग बुलाई अपनी सभासदों की, अपनी जो जो, जो मेंबर्स हैं उनके मंत्रियों की सभा बुलाई, बोला कोई जगह चुनो जहां मैं रह सकूं और मुझे कोई तंग ना करे, खास करके ये जो मुफ्त की सलाह दे दे करके तंग ना करे। तो लोगों ने सलाह दिया कि आप समुंदर में रहिए। बोले ये इंसान बड़ा समझदार है, वो समुंदर के चारों तरफ नाप डालेगा, एक दिन मेरे पास पहुंच जाएगा। बोला पहाड़ों के चोटियों पर रहिए, बोले वहां भी पहुंच गया है। बोले आप आसमान में रहिए, बोले वहां भी तो अब स्पेस शटल से पहुंचने वाला है। तो काफी सारे लोगों ने अलग अलग सलाह दी। आखिर में एक बुजुर्ग मंत्री था, उसने कहा ऐसा करिए कि आप इंसानों के अंदर रहने लगिए, घुस जाइए। कहते हैं ईश्वर ने उसकी बात मान ली और ये लाखों करोड़ों साल हो गया है, करोड़ों करोड़ों साल हो गया है, ईश्वर सबके अंदर घुस के रहने लगा और करोड़ों सालों से करोड़ों लोग करोड़ों जगह पर ईश्वर को ढूंढते हैं, ईश्वर कहीं मिलता नहीं है, क्योंकि ईश्वर वो उन्हीं के अंदर घुसा पड़ा है और हम अपने अंदर बहुत कम झांकते हैं। हमारी दशा वैसी है, अगली स्लाइड आप देखेंगे, जैसे कोई कस्तूरी हिरण होता है। ये कस्तूरी हिरण का एक फोटो है जिसको आप मस्क डियर कहते हैं, जो हिमालय के पहाड़ों में, बाकी राज्यों में भी, देशों में भी होता है, जिसके नाभि में एक खास तरह की पदार्थ है जो बहुत अच्छा खुशबू फैलाता है, फ्रेग्रेंस उसकी बड़ा अच्छी होती है, कस्तूरी। और कस्तूरी हिरण को भी वो खुशबू आता है और वो पूरे जंगल में पूरी जिंदगी भर दौड़ता रहता है ये पता लगाने के लिए कि ये खुशबू आता कहां से है, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशबू तो उसको आता है क्योंकि उसके पास ही है। और पूरी जिंदगी भर कभी कस्तूरी हिरण को पता नहीं चलता कि ये खुशबू आता कहां से है। हमारी और आपकी दशा इस कस्तूरी हिरण की तरह है, जो हम ईश्वर को दुनिया में ढूंढते हैं, मस्जिदों में, चर्चों में, मंदिरों में, तीर्थों में, नदियों में, शास्त्र पढ़ने में, बाबाओं के सत्संगों में ढूंढते हैं, और तब भी डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन के साथ जीने के लिए मजबूर होते हैं। ईश्वर को पाने का मतलब बिल्कुल खुशी में, बिल्कुल आनंद में रहना, पर वो खुशी हमें कहीं मिलती नहीं है, क्योंकि ईश्वर, जैसे आपने पहले कठोपनिषद में सुना था, ना किसी खास जगह पर मिलती है, ना किसी प्रवचन से मिलता है, ना किसी विचार से मिलता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ जिस दिन हम अपनी अंदर की ओर यात्रा करेंगे, खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे, उसी दिन हम उसको जान पाएंगे। ईश्वर हमारे आपके अंदर है, हम उसको ढूंढें, उसको पाए तो ज्यादा आसान होगा, पर हमारे लिए मुश्किल है। हम हर चीज में शॉर्टकट ढूंढते हैं, करप्शन इसी का नाम होता है। जब भी आप मेहनत करके पैसा कमाना नहीं चाहते, आप जो उसका नेचुरल टाइम है, जो उसकी प्राकृतिक समय है, उतने समय में उतना पैसा कमाना नहीं चाहते, आप चाहते कम से कम समय में, कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, वहीं से करप्शन शुरू होता है। ये दुनिया के हर चीज में फिट बैठता है। आप धर्म में करें, इकोनॉमी में अप्लाई करें, सोशियोलॉजी में अप्लाई करें, पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करें, साइंस में अप्लाई करें, जब भी आप शॉर्टकट वे लेते हैं तो आप करप्शन ही करते हैं। हमारे धर्मों में, दुनिया के हर धर्म में, मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, धर्म मतलब जिनको हम रिलीजियन मानते हैं, दुनिया के हर सेक्ट में, हर संप्रदाय में यही हुआ। हमारे पंडा, पंडित, मुल्ला, मौलवी, फादर, पैस्टरों ने यही हमें बताया कि ईश्वर को पाने के लिए अगर चाहते हो, अगर तुम्हें कोई अध्यात्म ज्ञान चाहिए, तो शॉर्टकट वे हमारे पास है। हम तुम्हें सबसे दुनिया का सरल और अनोखा तरीका बताएंगे, उसके लिए इतना डॉलर डोनेट करो, चर्च को दो, मंदिर को दो, मुझे दो, आश्रम को दो, वगैरह वगैरह, तो हम तुम्हें बड़ी आसानी से ईश्वर तक पहुंचा देंगे। मिडिल मैन पैदा हो गए लाखों की संख्या में, जिनके ऑफिस खुल गए, दुकानदारी खुल गई ईश्वर तक पहुंचाने के लिए, और वो मिडिल मैन जिनको हम तथाकथित धर्माचार्य कहते हैं, वो मिडिल मैन कमाने लगे, रोजगार करने लगे। आम आदमी बिना ईश्वर को पाए उतना ही दुखी, ईश्वर के पाकर भी उतना ही दुखी, क्योंकि जो माल उन्होंने दिया वो नकली माल था। क्योंकि ईश्वर कभी किसी पंडित के थ्रू, आचार्य के थ्रू, गुरु के थ्रू, पैस्टर के थ्रू, फैदर के थ्रू, मुल्ला के थ्रू नहीं आता। ईश्वर की अपनी औकात है, अपना सामर्थ्य है। अगर वो आपको देना चाहता है, आप उसको पाने के लायक हैं, वो सीधे आपके पास आएगा। उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। हमारी ये समस्या है कि हम उस सुपरमैन से नीचे ईश्वर को समझ नहीं सकते। और जब भी कोई शास्त्र आपको यह बताता है कि वो ईश्वर नाम रूप रहित, वो सर्वव्यापक है, वो तुम में है, मेरे में है, वो उस चीटी में है, वो उस घास में है, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे शत्रु में है, तुम्हारे मित्र में है, उसको ढूंढना है तो अपने आचरण को शुद्ध करो, मन को पवित्र करो। जितने भी दुनिया में कर्मकांड रिचुअल है वो ईश्वर को पाने के लिए नहीं है, हमारे मन को शुद्ध करने के लिए। रिचुअल करने के बाद अगर मन शुद्ध नहीं हुआ, मन निर्मल नहीं हुआ, मन की बुराइयां हटी नहीं, शारीरिक आचरण में सुधार नहीं हुआ, तो कोई उपाय नहीं है ईश्वर तक पहुंचने के लिए। ईश्वर एक सत्ता है जिसको पाने के लिए हमें अपने आप को प्योर करना जरूरी है, क्योंकि यह रास्ता बड़ा मुश्किल है, अपने आप को सुधारना मुश्किल है। तो इसीलिए हम उन शास्त्रों को भी नहीं मानते, ना उन शास्त्रों को पढ़ते हैं, ना ऐसे वचन बोलने वाले की बातें सुनते हैं, और हम वहां ज्यादा पसंद करते हैं जहां हमें कोई शॉर्टकट रास्ता बताए। इसीलिए आप देखेंगे बाजार में वही बिकता है जो सस्ता, सुंदर, मजबूत हो, कम देर तक टिकाऊ हो, चलेगा, सस्ता हो और देखने में अच्छा हो। आप किसी अच्छे बड़े कंपनी के ब्रांड वाले के चिप्स खरीदते हैं, $5 के चिप्स करते हैं, ऊपर उसके जो जो कवर है बड़ा शानदार कवर होता है, $5 की चिप्स अंदर देखेंगे मुश्किल से 10 चिप्स नहीं पड़ा होगा, मतलब 5 ग्राम की चिप्स नहीं होगी, उसके बावजूद भी आप $5 देने को तैयार हैं, क्योंकि उसकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी है और उसकी ब्रांड नेम बड़ा अच्छा है, तो आप देने को तैयार रहते हैं। तो लोगों ने वही किया कि पैकेजिंग अच्छा बनाया, अंदर माल कुछ भी हो, 5-4 चिप्स डाल दो चलेगा, जैसा भी हो चलेगा, अगर वो कड़वा भी लोगे कहेंगे इस ब्रांडेड का टेस्ट कड़वा ही होता है, तुझे तो ब्रांड का कुछ पता ही नहीं, तू क्या समझेगा कि कड़वापन क्या होता है, उस कड़वापन में ही टेस्ट है, क्योंकि वो अमुक ब्रांड का है। अगर अच्छी कंपनी अच्छे टेस्ट वाला दे तो भी बेकार है, क्योंकि वो फालतू ब्रांड का है, $1 में देता है। हमने इसीलिए धर्मों में ज्यादा करप्शन आया, सारे दुनिया के रिलीजियन में करप्शन इसीलिए बढ़ा, क्योंकि इंसान को हमेशा शॉर्टकट हुए चाहिए, और जो देने के जो जो चालाक है, जो क्लेवर है, जो कनिंग है, उनको यूज करना आता है, वो मार्केट हो या रिलीजियन हो या पॉलिटिक्स को हो, वो कनिंग लोग ज्यादा छा गए और हम सबको वो बेचते हैं और हम खरीदने को तैयार होते हैं। जो ईमानदार होता है वो सच्चा होता है, ठेठ बोलता है, हमें चीड़ मचता है, हम उनसे भाग जाते हैं। हमारे शास्त्र इसीलिए कहते हैं, जो वेद उपनिषद वगैरह, कि ईश्वर कौन है, बोले यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यन्ति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। किन उपनिषद कहता है, जहां तक तुम्हारी आंखें जा सकती है, जहां तक तुम्हारे कान सुन सकता है, जहां तक तुम्हारा जीव चख सकता है, जहां तक तुम्हारा मन सोच सकता है, वहां तक तुझे ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर वो नहीं जो आंखों से देखा जा सके, ईश्वर वो है जिसने आंखों को देखने लायक बनाया। ध्यान दीजिएगा, ईश्वर वो नहीं जिसको कानों से सुना जा सके, ईश्वर वो है जिसने कान को सुनने लायक बनाया। ईश्वर वो नहीं जो मन से सोचा जा सके, ईश्वर वो है जो मन को सोचने लायक बनाया। ये मेरी वाणी नहीं है, ये वेद की, उपनिषद की वाणी है, केनोपनिषद की वाणी है। हमारी एक मुश्किल, और वो इतना सूक्ष्म है, उसको केवल अपने चरित्र को, मन को शुद्ध किए बिना उसको अनुभव नहीं किया जा सकता। ये अनुभव का विषय, इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन, ये आंखों से देखने लायक नहीं है। और आपको दुनिया में करोड़ों लोग दावा करेंगे कि हमें तो भगवान दिखाई दिया। अगला स्लाइड। मान लीजिए मेरा एक जो मेरा प्रियतम व्यक्ति है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, व पत्नी का पति है, मां बाप है, दोस्त है, जिससे हम बहुत बड़ा प्यार करते हैं, अगर वो खो जाए, नष्ट हो जाए, मर जाए और मुझे वो सदमा सहना मुश्किल हो, तो मेरी मानसिक स्थिति में बदलाव आता है। मैं उसके मरने के बावजूद भी उसको कहीं भी देख लेता हूं। ये एक तरह के मानसिक रोग है, एक साइको डिजीज है। वो नहीं है, उसके बावजूद भी वो मुझे घर में दिखेगा, खाता हुआ दिखेगा, घूमता हुआ दिखेगा, रास्ते में दिखेगा। जो लोग दावा करते हैं कि उनको भगवान दिखता है, वो एक तरह के साइको फोबिया वाले ग्रस्त हैं, मनोरोगी होते हैं। इसको थोड़ा आप चर्च समझने की कोशिश करेंगे। आप ये बादल देखते हैं, ये बादल हैं, बादल क्लाउड्स। कभी कभी आप जब आपको खाली टाइम मिले, कभी खुले मैदान में जाकर थोड़ी देर बैठिए, आकाश को निहारिए, आपको बड़े प्यारे प्यारे बादलों के रूप देखने को मिलेंगे। ये देखिए घोड़ा है, ये घोड़ा डांस कर रहा है, ये जंपिंग रैबिट है, एक रैबिट है, एक कुत्ता जैसा दिख रहा है। मेरे ख्याल से आपको यही दिख रहा होगा, कुछ लोगों को ऐसा नहीं दिख रहा होगा और कुछ दिख रहा होगा। आपको क्या दिखता है डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की मनोवृत्ति है, कैसी टेंडेंसी है। कभी कभी बंदर जैसा शक्ल हो जाता है, हाथी जैसा शक्ल हो जाता है, आपके बच्चे को हाथी दिखेगा, गणेश के भक्त को वो गणेश दिखेगा। शक्ल जैसा दिखता है, किसी को इंसान दिखेगा वो, किसी को वो जीसस दिखेगा, किसी को वो अरविंदो दिखेगा, किसी को बाबा रामदेव दिखेगा। शक्ल एक जैसा है, दाढ़ी है, तीनों में दाढ़ी है। वो डिपेंड करता है कि आपकी किसके प्रति कितनी आस्था है, आपको वही दिखेगा और किसी को कुछ भी नहीं दिखेगा। कभी कभी आप भारत में रहे होंगे तो यहां भी बहुत चलता है, यहां की बात बाद में आएंगे, पहले अपनी बात कर लें। लोग मिल जाएंगे सपने में, देवी दर्शन में आई, अच्छा बोली तुम्हारे पिछवाड़े में 15 साल से पड़ी हुई हूं, तभी तो तेरी तरक्की नहीं हो रही है, पूछते नहीं मुझे। गांव वाले इकट्ठा हो गए, खोदने लगे, मूर्ति निकली तांबे की, पित्तल की। फिर शुरू हुआ ढोल बाजा मृदंग बजने लगे, पूजा पाठ अर्चना। 10 साल के बाद आप गए दोबारा, बड़ा मंदिर खड़ा हो चुका था, बाजार लग चुके थे, पंडित जी अपॉइंट हो चुका था और पूरी कमाई बढ़िया, सबको अपने अपने ढंग से कमाई शुरू हो गई थी। और जिसके आंगन में मिला था वो तो 5-10 मंजिल के घर बन चुके थे, गाड़ियां लेकर घूमता है, लोगों को कृष्ण देखते हैं, दिखते हैं, हनुमान दिखते हैं, जीसस दिखते हैं, अल्लाह दिखते हैं। जैसी हमारी वासना होती है हमें दिखता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं दिखता, पर यह मानसिक प्रकृति है। अपने यहां भी बहुत है, आप कभी नेट में जाएंगे देखेंगे, हाथ जैसा दिखेगा बादल में, बड़े बड़े लोगों ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक लिख डाला ब्लॉग में, किताबें, कि ईश्वर ने अपने हाथ दिखाया। रोटी जल जाती है ना कभी कभी आपकी रोटी, जब जब जो आपके पति लोग रोटी बनाते नए नए, तो रोटी थोड़ी अलग अलग देश के मैप बन जाता है, या जल जाती है तो उसमें एक दाग बन जाता है। कुछ लोगों को दागों में भी भगवान दिखता है, आपको दिखाऊंगा अभी। पत्थरों में घिस घिस के कुछ आकृति बन जाती है, अगली स्लाइड आप दिखाएंगे इससे पहले की। पत्थर घिस घिस के आकृति हो गई, ये थोड़ी हाथी जैसा दिखता है, हजारों लोग मानते हैं कि ये गणेश वहां आविर्भाव हुआ है, पर कौन? जो गणेश के भक्त हैं। अगली स्लाइड, ये एक चिप्स है, आलू की चिप्स है, जिसमें दाग पड़ गया, मतलब कभी कभी वो काला दाग पड़ जाता है ना, इस पर लाखों लोगों ने ब्लॉग लिखा है कि जीसस ने हमारे पर कृपा की, देखो मेरे चिप्स में आया, और उसको लाखों लोगों ने पूछा। ये तो मैं एक एक एग्जांपल दिया क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम है, अब समय हो चुका है, बच्चे तैयार हो चुके हैं। मतलब हम अपनी जिस तरह की मानसिक भावनाएं लेकर चलते हैं हमें वही दिखता है, पर हमारा शास्त्र कहता है ईश्वर आंखों से नहीं दिखता, ईश्वर ने आंख देखने लायक बनाया, जहां तक तुम देख सकते हो वो ईश्वर नहीं, जिसने आंख बनाया वो ईश्वर, जहां तक सुन सकते हो वो ईश्वर नहीं, जिसने सुनने लायक कान बनाया वो ईश्वर है। उस ईश्वर क्या है, आगे की चर्चा फिर आगे करेंगे, इस बात को यहीं रोकते हैं। अभी बच्चों का कार्यक्रम होगा, बड़ा सुंदर कार्यक्रम, उसका आप आनंद लें। ओम शांति।